તારીખ 28/2/1997 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 166 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 176.
એક એક શબ્દમાં અનંત આગમ રહ્યા છે એ વાત કેમ હશે? પહેલું વચનામૃત છે. જિજ્ઞાસા ઉભી કરી છે. સત્પુરુષના એક એક વાક્યમાં નહીં પણ એક એક શબ્દમાં પણ અનંત આગમ રહ્યા છે. જેમ કે આત્મા એવો એક શબ્દ કહે છે તો આત્માના જ્ઞાનમાં જે અનંત આગમો ઉત્પન્ન થયા એ આત્માના જ્ઞાનમાંથી થયા. આગમનું ઉત્પત્તિ સ્થાન તો આત્માનું જ્ઞાન છે. જે આત્માને જાણે છે, આત્મજ્ઞાન જેને થયું છે અને જે આત્માને જાણે છે તે અનંત નયનો સ્વામી છે એવો આત્મા, અનંત નયનો અધિપતિ છે એવો જે આત્મા, એને જાણીને કહે છે. પદાર્થમાં ગુણધર્મો અનંતા હોવાથી તેમાં પરિણમનારું જ્ઞાન પણ અનંતા નહીં પરિણમે છે. કથનમાં કોઈ એક નય વચનમાં આવે છે, વાક્યમાં તો કોઈ એક નય આવે છે પણ એ નય બીજા કોઈ પણ નયને દૂભવા વિના નીકળે છે. એવું જે વચન નીકળે છે એ બીજા કોઈ નયને દૂભવા વિના નીકળે છે એટલે યથાર્થપણે નીકળે છે. જે યથાયોગ્યપણે કહેવા માગે છે તેટલું જ તે કહે છે. એના ઉપર થોડો આગળમાં વિવેચન આવે છે, સ્પષ્ટીકરણ કૃપાળુદેવના પત્રમાં જ. સાતમો જે પત્ર છે ને 208મો પત્ર છે. અનંતા નય છે. 207માં નીચે છેલ્લો પેરેગ્રાફ છે. નય અનંતા છે. એક એકા પદાર્થમાં અનંત ગુણધર્મો છે તેમાં અનંત નય પરિણમે છે. એક એક ગુણ અને એક એક ધર્મ પ્રત્યે અનંત નય પરિણમે છે. એક ગુણ પ્રત્યે અને એક ધર્મ પ્રત્યે પણ અનંત નય પરિણમે છે. સપ્તભંગી છે ને, સાત તો લે છે પણ એવા અનંત અનંત પરિણમે છે. માટે એ માટે પદાર્થનો નિર્ણય કરવા માંગીએ તો થાય નહીં, એની વાત કોઈ બીજી હોવી જોઈએ. અનુભવ જ્ઞાન ઘણું કરીને આ વાતને જ્ઞાની પુરુષો જાણે છે અને તેઓ તે નયાદિક માર્ગ પ્રત્યે ઉદાસીન વર્તે છે, જેથી કોઈ નહીનું એકાને એકાંતે ખંડન થતું નથી અથવા કોઈ નહીનું એકાંતને મંડન થતું નથી. જેટલી જેની યોગ્યતા છે તેટલી તે નહીની સત્તા જ્ઞાની પુરુષોને સંમત હોય છે. આ વચન બહુ સરસ લખાયું છે. જેટલી જેની યોગ્યતા છે, જે ગુણધર્મની જેની જેટલી યોગ્યતા છે તેટલી તે નહીની સત્તા, તે નહીનું અસ્તિત્વ જ્ઞાની પુરુષોને સંમત હોય છે. માર્ગ જેને નથી પ્રાપ્ત થયો એવા મનુષ્ય નળીનો આગ્રહ કરે, અને તેથી વિષમ ફળ ની પ્રાપ્તિ હોય છે. પકડ કરે એક વાતને, એ વિષમ ફળ ની પ્રાપ્તિ થાય છે. એટલે કશાય ઉત્પન્ન થાય છે, કોઈ નહીં જ્યાં દુભાતો નથી, એવા જ્ઞાનીના વચનને અમે નમસ્કાર કરીએ છીએ. ક્યાં કહેતે હૈ કે જ્ઞાની પુરુષ કે એક વચન મેં યા એક શબ્દ મેં અનંત આગમ રહે હૈ, યે બાત કૈસી હોગી, કિસ તરહ સે યે બાત હોગી, એસા એક પ્રશ્ન ઉઠાયા હૈ. ઇસલિયે કે જ્ઞાની કે જ્ઞાન મેં પૂરા પદાર્થ હૈ, આત્મા જો પદાર્થ હૈ તો ઉસકે અનુભવ મેં હૈ, ઉસકા અનુભવ જ્ઞાન હોને સે યથાર્થ રૂપ સે વો અપને સ્વરૂપ કો આત્મ પદાર્થ કો જાનતે હૈ. અનંત આગમ જો નિકલે હૈ વો આત્મા મેં સે નિકલે હૈ, આત્મા કે જ્ઞાન મેં સે નિકલે હૈ. વો આત્મા કા જ્ઞાન જિસકો હૈ ઉસકો અનંત નય કા જ્ઞાન લબ્ધિ રૂપ સે હો ગયા. નય જ્ઞાન તો શ્રુત જ્ઞાન હૈ, લેકિન જિસકો સ્વાનુભવ હુઆ ઉનકો તો કેવલ જ્ઞાન કી લબ્ધિ હોતી હૈ. ઉપયોગ બાદ મેં હોયગા, કેવલ જ્ઞાનોપયોગ તો બાદ મેં હોયગા, લેકિન લબ્ધિ તો ઉસ વક્ત પેદા હો જાતી હૈ, ઉત્પન્ન હો જાતી હૈ. તો જિસકો કેવલ જ્ઞાન કી લબ્ધિ હૈ ઉસકા શ્રુત જ્ઞાન કા ક્યા કહેના. ऐसे ज्ञानी पुरुष के एक शब्द में अनंत आगम समाविष्ट है, माने अनंत नयों की संधि एक शब्द बोलने में आती है. और उपयोग को घुमाना नहीं पड़ता, लंबा चौड़ा उपयोग को घुमाना नहीं पड़ता, ऐसी लब्धि लेकर के उपयोग की प्रवृत्ति होती है. આત્માના અનુભવ ને કારણે, આત્માનુભવ જો હોય તો આત્મા જીસ આત્મા કા અનુભવ હુઆ અંતર મેં ઉસમે તો કેવલ જ્ઞાન આદિ અનંત ગુણ સંપત્તિ ફરી હુઈ હૈ, ઉસકા અનુભવ હુઆ. તો અપના સર્વજ્ઞ સ્વભાવ કો અનુભવ મેં લેકર કે પરિણમન ચલતા હૈ જ્ઞાન કા. સર્વજ્ઞ સ્વભાવ હૈ આત્મા, ઉસકો સ્પર્શ કરતે ઉસમે તન્મય હોતે હુએ ज्ञान का परिणमन होता है. तो उसे केवल ज्ञान सर्वज्ञ स्वभाव अल्प काल में प्रकट होगा. तो केवल ज्ञान का जन्म होने वाला है. जन्म किसका होता है, तो जो गर्भ में आता है उसका जन्म होता है. ये इसका प्री स्टेज है क्या नहीं है, हुँ? तो जिस ज्ञानी को केवल ज्ञान होने वाला है उसके ज्ञान के गर्भ में केवल ज्ञान आ गया, उसको कहते हैं केवल ज्ञान की लब्धि. लब्धि माने प्राप्ति. केवल निज स्वभाव नु अखंड वर्ते ज्ञान कहिए केवल ज्ञान ते देह छता निर्वाण. કેટલું ગંભીર વાત છે. ઇસ તરહ સે જ્ઞાની કા જ્ઞાન પ્રવર્તિત હોતા હૈ તો ઉસકે એક શબ્દ મેં અનંત આગમ રહા હૈ. ઇતની મહિમા મુમુક્ષુ કો ज्ञानी की वाणी की आती है, इतनी महिमा आती है। हाँ, वो तो क्या है कि अपना जो तत्वार्थ सूत्र है उसमें तो सूत्र लिखा है उमा स्वामी महाराज ने कि जितना केवल ज्ञान का विषय है उतना ही मति स्वरूप ज्ञान का विषय है, सम्यक मति स्वरूप ज्ञान का विषय है। फर्क उतना है कि केवल ज्ञान में वो प्रत्यक्ष है और मति स्वरूप ज्ञान में वो परोक्ष है, बाकी विषय तो उतना का उतना ही है। तो कैसे कि जैसे केवल ज्ञान का विषय छह द्रव्य है, छह द्रव्य से आगे तो विश्व है ही नहीं कुछ, पर मति स्वरूप ज्ञान में भी उसका स्वीकार आ जाता है। सम्यक मति स्वरूप ज्ञान में छह द्रव्य का स्वीकार है क्या? नहीं है, तो दोनों का विषय तो एक सरीखा हो गया, कोई फर्क नहीं रहा। फर्क उतना रहा कि केवल ज्ञान प्रत्यक्ष सर्व भेद सहित जानता है, मति स्वरूप ज्ञान परोक्ष भेद रहित जानता है, बाकी विषय तो उतना का उतना ही है। तो बात उमा स्वामी महाराज ने तो तत्वार्थ सूत्र में लिया ही है। इसलिए ज्ञानी का वचन एक शब्द में अनंत आगम रहा है, उतनी वैल्यू है ज्ञानी के एक शब्द की, उतनी वैल्यू है। उसका मूल्यांकन हुए, सही मूल्यांकन हुए तो ये वचन से यहाँ सुनने वाले को निमित्त नैमित्तिक रूप से आत्मलाभ होता है, इतना मूल्यांकन होना चाहिए, ये कहने का अभिप्राय है। रात्रि चर्चा में गुरुदेव ने एक दफे इस कृपालु देव का इस वचन का बहुत प्रशंसा किया था। देखो क्या कहते हैं, एक शब्द में अनंत आगम रहा है, बहुत प्रमुख से बात करते थे, ऐसी बात किया है। केवल ज्ञान की लब्धि की तो बात वो अपने प्रवचन में करते थे कि जो न्याय 14 पूर्वधारी, 14 पूर्व मैंने 12 अंग, 11 अंग और 14 पूर्व, उसको 12 अंग कहते हैं, 12 अंग का 14 पूर्व है, तो 14 पूर्व मैंने 11 अंग तो आ गया उसमें, तो 12 अंग का ज्ञान वाला जो न्याय निकालता है वो न्याय सम्यक दृष्टि निकाल सकता है, क्योंकि उसके एक वचन में एक शब्द में अनंत आगम भरा है। उसमें क्या बात है कि नय तो ज्ञान का अंश है और अनंत ज्ञानवंत जो आत्मा है वो सभी नयों का अधिपति है। ऐसा आत्मा का कब्जा दृष्टि ने कर लिया है, दृष्टि के कब्जे में वो आत्मा है। क्या 213 में क्या बोला, 213 पत्र में क्या बोला है? हाँ, जो परमात्मा उसको, परमात्मा को जिसने वश किया है, हाँ है? कोई भी वश कैसे होता है, जबरदस्ती से कोई वश नहीं होता है, बच्चा भी, लेकिन परमात्मा तो प्रेम से वश होता है। परब्रह्म परमात्मा क्या निर्विकार होने के बावजूद भी आता है, 201 पत्र का हेडिंग है, जिसने परम प्रेम से वश किया है और वो परमात्मा को अपने वश करने के बावजूद भी जो उन्मत्त नहीं हुए, पचा लिया सबको, परमात्मा को भी पचा लिया, ऐसी कोई दशा से वर्तता है, ऐसे सत्पुरुष को हम नाम लेके भी नमस्कार करेंगे, ऐसा किया है। 213 में क्या बोला, व्यक्तिगत रूप से उसको नमस्कार करने को हम तैयार है, फरी-फरी ने नमस्कार करी जैसी। इतना बहुमान खुद को, सत्पुरुष को अन्य सत्पुरुष के प्रति है, ऐसी बात है। तो क्या है कि आत्मगुणों है, आत्मगुण का प्रमोद है उसमें, जिसने आत्मगुण प्रकट किया है ऐसे आत्मगुण का वो प्रमोद करते हैं। नीचे के वाक्य वचन प्रत्येक मुमुक्षुओं को यह असंख्य सत्पुरुषों की सम्मति से मंगल रूप माने हैं और मोक्ष के सर्वोत्तम कारण रूप भी माने हैं। ये 5 वचन लिए हैं। कृपालु देव का जो गहरा थिंकिंग था, गहरी विचारधारा था, विचारधारा थी, उसमें से 5 रत्न निकाल करके दिए कि देखो हमारी निधि में तो खजाना बहुत है, तुमको थोड़ा सैंपल चखाते हैं, तुम उसको रसा स्वादन करो, तुमको और भी सत्पुरुष के प्रति लालच बढ़ेगी। पहला, माइक सुख की सर्व प्रकार की वांछा कभी भी छोड़े बिना छुटकारा होने वाला नहीं है। माइक सुख मैंने काल्पनिक सुख, जिसमें सुख की कल्पना है, सुखाभास है, वास्तव में सुख नहीं है। उसकी जो सर्व प्रकार की, अनेक प्रकार की जो इच्छा होती है, वांछा मैंने इच्छा होती है, सुखाभास के कारण से इच्छा होती है, उस प्रकार की इच्छा छोड़े बिना जीव बंधन से छूट सकेगा नहीं, क्योंकि माई बंधता है, माइक सुख की इच्छा में ही वो बंधता है, तो वो भ्रांति छूटेगी तो इसकी इच्छा छूट जाएगी, वो भ्रांतिगत सुख है। पता चल गया कि वो भ्रांति है, उसमें दुख और आकुलता है, सुख तो कल्पना मात्र है, इसलिए उसको मायावी सुख कहते हैं। माइक सुख माने मायावी सुख कहते हैं। वो भ्रांति मिटते ही उसकी इच्छा छूट जाती है, और ऐसा हुए बिना जीव का संसार परिभ्रमण से छुटकारा होने वाला नहीं है। तो जब से इस वचन का श्रवण किया, तब से ही यह क्रम का अभ्यास करना योग्य ही है, ऐसा समझना। तो जब से ये बात का श्रवण किया मतलब श्रवण करके स्वीकार किया, सम्मत कर लिया कि बात तो सही है, अगर मुझे संसार के परिभ्रमण से छूटना है तो ये जो मायावी सुख है वो भ्रांतिगत रूप से सही सुख मालूम पड़ता है, वो भ्रांति छोड़नी होगी तभी इच्छा छूटेगी। वो भ्रांति छोड़ने का भी कोई क्रम है, क्या है, तब से ही यह क्रम का अभ्यास करना योग्य है। क्रम शब्द लिया है और ये बात तो माननी पड़ेगी कि छोटा मोटा कोई भी काम होता है उसकी पद्धति होती है। हिसाब किताब रखने की भी एक पद्धति है, अकाउंट सिस्टम जिसको कहते हैं। बाकी छोटे मोटे सब काम की पद्धति ही है। रोटी रोटी बनाने की पद्धति से होती है, हलवा हलवा बनाने की पद्धति से होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कोई कैसा भी काम कर लेता है, ऐसा नहीं है। संगीत संगीत की पद्धति से सीखने में आता है, कोई भी काम ले लेना। तो ये सारा संसार का दुख से छूटने का महान कार्य, इसकी कोई कार्य पद्धति ही नहीं हो गए पर सब लोग अपनी मनमानी करने लगे कि चलो हम तो माला फेर लेंगे, तो कोई बोलेंगे कि हम तो उपवास कर लेंगे, कोई कहेंगे कि हमको तो शास्त्र पढ़ना है, तो कोई बोले कि हम तो यात्रा कर लेंगे, दान दे देंगे या जप तप कर लेंगे। ऐसा नहीं चलता। वो काम में जो एक्सपर्ट है, उस काम के जो एक्सपर्ट है, उसी से वो मालूम पड़ती है कि पद्धति क्या है इसमें। पर वो उसका क्रम सूचित कर सकता है कि पहले ऐसे करो, पहला ये करो, पहला ये करो, पहला ये। इस संसार से छूटना इसलिए कठिन है कि पद्धति जानता नहीं जीव। पद्धति जानता नहीं और पद्धति से काम करना है वो भी जानता नहीं। धर्म के क्षेत्र में सब अपना अपना डेट डापन कर लेते हैं, ऐसा होना नहीं, वैसा नहीं होना, ऐसा होना नहीं, वैसा नहीं होना, तो खुद अनजाना है। परिस्थिति है कि खुद तो अनजाना है और मैं समझता हूँ, ये बात आ जाती है, दो बात समझने से मैं समझता हूँ ऐसा आ जाता है। तो उस तरह से तो और परिभ्रमण बढ़ जाएगा, क्या होगा,
और बढ़ जाएगा
स्वच्छंद से तो परिभ्रमण और बढ़ जाएगा। इसलिए दूसरे वचन में उन्होंने कहा कि कोई भी प्रकार से सदगुरु की खोज करना, खोज करके उसके प्रति तन मन वचन और आत्मा से अर्पण बुद्धि करना। धन नहीं लिया, देखो तन मन, क्योंकि धन की कोई जरूरत नहीं है ना। ये तो संसार में धन की जरूरत पड़ती है, परम पारमार्थिक मार्ग में धन की जरूरत नहीं पड़ती। यानी किसी से भी धन नहीं मांगेंगे कि तुम इधर इतना पैसा खर्च करो, तो ज्ञानी का काम नहीं है, कहेंगे नहीं किसी को। कोई भी प्रकार से सद्गुरु की खोज करना, खोज करके उसके प्रति तन मन वचन और आत्मा से अर्पण बुद्धि करना। यानी क्या, तन मन वचन में तन से जो काम करना है शरीर से, मन से जो काम करना है और वचन से जो काम करना है, तो उसकी आज्ञा में रह करके करना है। कर्तव्य करना इसका मतलब ये है कि इसकी आज्ञा में रह करके करना है, मैं सही कर रहा हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ। और आत्मा से अर्पण बुद्धि करना, मैंने राग से अर्पण बुद्धि नहीं करना। अर्पणता दो प्रकार से होती है, इसलिए शब्द प्रयोग किया है। राग से जो समर्पित होता है वो कभी द्वेष में आता है। क्यों? कि राग का जो सिक्का है उसका दूसरी बाजू द्वेष है, राग द्वेष से जुड़ा हुआ है। जैसे ही राग खिसका उसका स्थान द्वेष ले लेगा, ये बन जाएगा। इसलिए राग से समर्पण नहीं करना है, आत्मा से समर्पण करना है। ये क्या होता है कि राग का आधार पुद्गल है और आत्मा का आधार आत्मा है। राग का विषय कौन है? पुद्गल है, और आत्मा का विषय आत्मा होता है। तो सत्पुरुष के जिसको आत्मगुण प्रकट हुआ है उसके प्रति उनका समर्पण है, और वो आत्मा से है, अपने गुणों से समर्पण करता है। वो गुणों से कैसे समर्पण करता है? तो दोष को निकालने वाला ही है, गुण प्रकट करने वाला है, उस तरह से। उसकी ही आज्ञा का सर्व प्रकार से निशंकता से आराधन करना, शंका किए बिना, संशय किए बिना उसकी आज्ञा का सर्व प्रकार से आराधन करना, और तभी ही सर्व मायिक वासना का अभाव होगा ऐसा समझना। तब क्या है कि मायिक सुख जो है वो मायिक सुख वाले जो परिणाम है वो मलिन परिणाम और दूषित परिणाम है। उस दोष को निकालना है, सभी प्रकार के दोष को मिटाना है। कैसे मिटता है वो खुद नहीं जानता, मिटाने का इलाज खुद तो नहीं जानता। तो सत्पुरुष जानता है कि इस जीव की योग्यता कैसी है, उसके लायक कौन सी चीज है जिससे उसका दोष निकलेगा। अयोग्यता का भी बहुत प्रकार है। कितने प्रकार है? असंख्य प्रकार है। कितने? असंख्य प्रकार है। कोई जीव कैसी योग्यता वाला, कोई कैसी योग्यता वाला, कोई कैसी योग्यता वाला, सब एक योग्यता वाला है नहीं। तो कोई ऐसा समझ ले कि मैं ऐसा साधन करूंगा तो मेरा संसार का अभाव होगा, वो बात तो दर्दी खुद डॉक्टर हो गया। क्या हुआ? दर्दी खुद डॉक्टर हो गया। उसका दर्द बढ़ेगा, उसका दर्द कभी मिटने वाला नहीं है। ज्ञानी जानता है कि उसको किस तरह से ठीक किया जाए, क्योंकि उस विषय परिज्ञान उसको है। उनको ये दवाई देना, उनको ये दवाई देना, उनको ये दवाई देना, सबको अलग अलग बात कहेंगे। हमने तो दूसरे ज्ञानियों की चर्चाओं का अनुभव किया है, जैसे गुरुदेव थे, बैंसरे थे, सुगानी जी थे, तीन तो अपने प्रत्यक्ष परिचय में आ चुके हैं। एक ही प्रश्न अलग अलग जीव पूछता है और एक ही प्रश्न का अलग अलग उत्तर वो देते हैं, एक उत्तर नहीं देते। ऐसा क्यों? इसलिए कि इसी प्रश्न का उसको ये उत्तर ही, उसके लिए ये उत्तर ही योग्य है। वही प्रश्न का दूसरे के लिए यही उत्तर योग्य है, वही प्रश्न का तीसरे के लिए दूसरा उत्तर योग्य है। प्रश्न एक है, ऐसे कोई ऐसा पूछेगा आत्मानुभव कैसे करना, कॉमन क्वेश्चन है, सबको अलग अलग जवाब मिलेगा। क्यों? कि प्रश्न पूछने वाले की योग्यता को ध्यान में रखते हुए वो कहेंगे कि इस तरह से आप, तुमको आगे बढ़ना है, तुमको आत्मानुभव करना है तो वैसा करो, तुम अच्छा करो। क्यों? कि जो पूर्व दिशा में खड़े हैं उसको कहेंगे कि तुम पश्चिम में चलो, तब ये चीज तुम्हारे सामने आएगी। पर पश्चिम में खड़ा है उसको क्या कहेंगे कि तुम पूर्व में चलो? तो डॉक्टरी ट्रीटमेंट में ऐसा ही होता है, बुखार तो बुखार है लेकिन सबकी दवाई अलग अलग। माथा दुखना का माथा का दुखावा एक ही बात है, उसकी 50वीं दवा है। खांसी में भी ऐसी है, क्यों? कि उसका रूट कॉज अलग अलग है, मूल कारण अलग अलग है। ये मूल कारण को वो ज्ञानी जानते हैं, खुद को ऐसा इसका पता होता नहीं। इस प्रकार की ट्रीटमेंट की आवश्यकता होने से कृपालु देव कहते हैं कि कोई भी प्रकार से सदगुरु का शोध कीजिए, अर्पण बुद्धि करना। इसमें क्या है, टोटल सरेंडरशिप आती है। आत्मा से अर्पण बुद्धि करने की क्या बात है कि जीव ऐसा एक निश्चय कर लेता है, जब उनको कोई सत्पुरुष मिल जाता है तो एक निश्चय कर लेता है। देखिए, मैं कुछ जानता नहीं, मैं कुछ समझता नहीं, मेरी योग्यता भी मैं नहीं जानता, मेरी अयोग्यता को भी मैं नहीं जानता, और मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो भी मैं नहीं जानता। आप मुझे बताइए, बस मैं करने को तैयार, उसमें मेरे को कोई विकल्प नहीं है, मेरे को कोई विकल्प नहीं है। वर्तु शरणाधीन, आपके चरण मैंने वचन, आपके जो वचन है उसके अधीन मुझे जो भी करना है वो करना है। मेरा मतलब एक आत्म कल्याण करना है, दूसरा कोई मेरा मतलब है ही नहीं। बहुभाग लोग क्या करता है, ज्ञानी को कहेंगे कि मैं कौन सा शास्त्र पढ़ूं? तो शास्त्र पढ़ना तो तुमने निश्चय कर लिया, अब पूछता है कि कौन सा पढ़ूं, तो आधा तो तुमने निश्चय कर लिया, आधा के लिए उनकी राय लेना है, तो बात बराबर नहीं। मैं क्या करूं, आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए। आप जहां भी कहो वहां मेरे को एक कदम भी रखना है तो आप बोलो वहीं रखना है। तो क्या है कि वो आत्मा से अपना काम करना चाहता है, कोई राग से नहीं करना चाहता है। राग में हेतु अलग होता है, राग का हेतु आत्म कल्याण नहीं है, आत्मा का हेतु आत्म कल्याण है। उसी को ही कहते हैं आत्म कल्याण की सही भावना। बाकी राग तो अनंत बार किया है, राग करने में क्या किया है कि कभी इसका बाह्य त्याग देख लिया कोई व्यक्ति का, या कोई व्यक्ति का वाणी को देख लिया, ज्ञान का क्षोभ वाली वाणी हो तो उसको देख लिया। दोनों पुद्गल है, दोनों पुद्गल है, उसका राग हो गया, उसको क्या हुआ, उसका राग हो गया। तो राग हो गया, उससे अपना काम होने वाला धर्म के क्षेत्र में दो ही जगह जीव भूल करता है, एक बाह्य त्याग में और एक बाह्य क्षोभ के साथ जो वाणी होती है उससे। क्षोभ तो वाणी से पता चलता है जो कि कितना वो समझता है समझाता है, तो दो में आकर्षण हो जाता है। वो आत्मिक गुणों को नहीं पहचानता, आत्मिक गुण पहचानने के लिए अंतर्दृष्टि चाहिए, वो अंतर्दृष्टि का विषय है, ये सब बाह्य दृष्टि का विषय है। अपने स्वाध्याय में चला था बाह्य दृष्टि और अंतर्दृष्टि वाला विषय। तो बाह्य दृष्टि से राग उत्पन्न होता है, अंतर्दृष्टि से ज्ञान उत्पन्न होता है, ये फर्क पड़ता है। तो यहां से लाइन पूरी जुदी पड़ जाती है। हाँ, तक राग है। इसलिए ज्ञानियों की आज्ञा है कि ओग संज्ञा में लंबे काल तक स्थिति मत रखो। अगर ओग संज्ञा में रह जाओगे और ज्ञानी अपना आयु पूर्ण करके स्वर्ग में चले जाएंगे, क्या जाएंगे, यहाँ से तो स्वर्ग में ही जाना होता है, तो फिर प्रत्यक्ष योग तो रहेगा नहीं। तो प्रत्यक्ष योग रहेगा नहीं तो फिर जो प्रत्यक्ष योग से निमित्त नैमित्तिक संबंध से बीज ज्ञान मिलता है वो बीज ज्ञान मिलेगा नहीं, और बीज ज्ञान बिना सम्यक ज्ञान है ही नहीं। बीज ज्ञान मैंने दूसरा संकेत, और आज्ञाधीनपण वर्तने का भी प्रत्यक्ष योग में ही होता है। परोक्ष ज्ञानी में उनके पीछे क्या करेगा, परोक्ष ज्ञानी में तो कुछ होएगा नहीं, उनके तो वचन रह जाते हैं, खुद तो है ही नहीं। वो तो वचन में खुद भूल करेगा तो वो कहने को आएंगे नहीं कि मैं तो ये मैं ये कहना चाहता हूँ, और तुम वो दूसरी बात समझता है। वो तो कैसा परोक्ष में तो कोई होने वाला है, और प्रत्यक्ष में प्रैक्टिकल दिखेगा, परोक्ष में तो प्रैक्टिकल कहाँ से दिखेगा, वचन ही रह गया, व्याख्या रहेगी, थियोरी है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो ये जो प्रत्यक्षता का जितना भी प्रकार का लाभ है वो लाभ परोक्षता में नहीं मिलता। इसलिए जहां तक प्रत्यक्ष योग है ओग संज्ञा को निकाल करके सही पहचान में आ जाना। सही पहचान हुई कि पहला संकेत आया, पहचान के साथ अनुसंधान सम्यक दर्शन का लिया कृपालु देव ने 751 में, उसको कहते हैं कि वचन की प्रतीति विश्वास। ये ब्रह्म वाक्य है। दूसरा आज्ञा रुचि, उनकी जो आज्ञा है वो मेरे को उठानी है, जो भी कहते हैं मेरे कल्याण के लिए कहते हैं, तो उनकी आज्ञा रुचि एक ऐसा शब्द प्रयोग किया है कि उसको बहुत आज्ञा में रुचि हो जाती है कि क्या मेरे कल्याण की बात आती है। और स्वच्छंद निरोध भक्ति, कैसी भक्ति, स्वच्छंद निरोध भक्ति। भक्ति तो भक्ति है लेकिन स्वच्छंद पूर्वक भी होती है और स्वच्छंद बिना भी होती है, स्वच्छंद बिना की भक्ति। ये तीन मुद्दा लिया है 751 पत्र में। बस सम्यक दर्शन का बीज है वो मिल गया यहाँ से, ये प्रत्यक्ष योग में संभवित है, दूसरे प्रकार में कहीं भी संभवित नहीं है। इसलिए तन मन वचन और आत्मा से अर्पण बुद्धि करना वही आज्ञा का सर्व प्रकार से, उसी की आज्ञा का सर्व प्रकार से निशंकता से आराधन करना। जो भी आज्ञा दे शंका नहीं होनी चाहिए, शंका हुई कि भक्ति चली गई, सबसे पहले भक्ति चली गई और अभक्ति हो गई, और तभी सर्वमायिक वासना का अभाव होगा और तभी भ्रांति छूटेगी। जो भी मायिक सुख संबंधी काल्पनिक सुख की भ्रांति है तो इसके पहला छूटेगी नहीं। अब जो ऊपर बात कही कि जब से सुना है तब से ही इस क्रम का अभ्यास करना, उसमें पहला क्रम ये है, माइक सुख तभी छूटेगा ऐसा बोले ना। अब देखो दो वचनों का कोऑर्डिनेशन कर लो कि माइक सुख छोड़ना है, उसका क्रम पकड़ना है। तो क्रम पकड़ना में क्या करना है कि सदगुरु की खोज करो तभी, और आज्ञाधीनपणे वर्तन करो तभी सर्व माइक वासना का अभाव। छह सौ नौ पत्र में लिया है। मिथ्याग्रह स्वच्छंदपणु प्रमाद ने इंद्रिय विषयनी उपेक्षा न करी हो तो ज सत्संग फलवान थाय नहीं, अथवा सत्संग में एक निष्ठा अपूर्व भक्ति आणी न हो तो फलवान थाय नहीं। हवे कैसे कि जो एक एवी अपूर्व भक्ति थी सत्संग ने उपासना करी हो तो अल्पकाल में मिथ्या आग्रह आदि सर्व दोष अनुक्रमे सर्व दोष से जीव मुक्त था है। तो उसमें इंद्रिय विषय ले लिया है, माइक सुख जिससे होता है, अपूर्व भक्ति बात खत्म कर देंगे। देखो कितना कैसा साधन है वो, तो बिल्कुल प्रैक्टिकल इसलिए है कि एक और अधिक झुकने से, एक और अधिक झुकने से सर्व प्रकार के भाव खत्म हो जाते हैं। इधर से सुख मिलेगा, उधर से सुख मिलेगा, सब खत्म। क्यों? कि पंचेंद्रिय के विषय के प्रति भी एक झुकाव है और सत्पुरुष के प्रति अपूर्व भक्ति भी एक झुकाव है जो परस्पर विरुद्ध है। इधर झुकता है वो उधर नहीं झुकता, इधर झुकता है वो उधर नहीं झुकता। सीधी आंगली टेढ़ी नहीं है, टेढ़ी है वो सीधी नहीं है, क्योंकि एक अंग उंगली की दो अवस्था तो एक साथ हो ही नहीं सकती। जो सीधी होगी तो फिर टेढ़ी नहीं रहेगी, टेढ़ी है तो सीधी नहीं रहेगी। तो ट्रांसफर कर दिया, झुकाव का ट्रांसफर। क्या तुम झुका हुआ तो है ही, माइक सुख के प्रति तुम झुका हुआ है। अब कहते हैं कि तू झुक जा सत्पुरुष के प्रति, वरना तेरे से यहाँ का झुकाव छोड़ना कोई छोड़ा सकेगा नहीं। तुम चाहे जितना संयम पालो, दमन करो, चाहे जितना शास्त्र पढ़ लो, दो क्षोभम है, एक चारित्र गुण का क्षोभम है संयम पालना, और शास्त्र पढ़ना ज्ञान गुण का क्षोभम है। दोनों क्षोभम फैल जाएगा और पुरुषार्थ मान लगाएगा तो वीर गुण का क्षोभम है। तीन प्रधान गुण का क्षोभम फैल जाता है। देखो ये सही रास्ता बता दिया कुल बाबू ने।
यही झुकू એટલે કઈ રીતે
હે
झुकू એટલે કઈ
झुकू અપૂર્વ ભક્તિ ક્યા અપૂર્વ ભક્તિ ઉસકા નામ ઝુકના अपूर्व बहुमान उसका नाम झुकना। सुबह एक बात लिया था, एक न्याय लिया था सुबह। देखो हमारे तो सब उपकारी है, जितने भी निमित्त हैं हमारे उपकारी है, तो मतलब सारा विश्व भी हमारा हमारे ज्ञान में सब निमित्त ही निमित्त है, वो उसमें कोई निमित्त ऐसा है कि जो उपसर्ग करता है, क्या करता है, कोई निमित्त ऐसा होता है कि जो उपसर्ग करता है, तो ज्ञानी को तो वो भी उपकारी है। क्या कैसे कि अधिक निर्जरा का निमित्त होता है, क्या होता है उपसर्ग आता है तो क्या होता है, अधिक निर्जरा होती है। तो जो उपसर्ग करने वाले उपकारी नजर आते हैं तो फिर सदगुरु कितने उपकारी नजर आते होंगे, हिसाब कर लो। ये त्रियासी लगाने की है। इस तरह से कितनी उपकार बुद्धि आएगी कि जिसकी हद नहीं, अपार उपकार है। क्या लिया था, स्वाध्याय चलता था, इसमें क्या लिया था कि अचिंत्य द्रव्य की शुद्ध चेति स्वरूप कांति परम प्रकट हो करके अचिंत्य करती है। ऐसा अचिंत्य द्रव्य निज स्वभाव स्वरूप है, ऐसा निश्चय जिस परम कृपालु सत्पुरुष ने प्रकाशित किया है उसका अपार उपकार है। ऐसा आत्मा, ऐसा स्वरूप, मेरा ऐसा स्वरूप मुझे दिखाया, इसका उपकार की कोई अवधि होती। उपसर्ग करने वाला जो उपकारी है तो ऐसा दिखाने वाला कितना उपकारी होगा, इसका कोई पार हो सकता नहीं है। सारे विश्व में जो भी उपसर्ग करता है ना उसको दुश्मन माना जाता है। लोक व्यवहार में, संसार में जो भी उपसर्ग करता है उसको दुश्मन माना जाता है। और ज्ञानी के ज्ञान की गंभीरता को देखो तो उसको उपकारी गिनता है। इसलिए उनको द्वेष आता है, उपसर्ग करता प्रत्यर्पण द्वेष नहीं। तो उपसर्ग करता प्रत्येक द्वेष नहीं तो किसी के प्रति राग करने की बात है। राग तो अनुकूल वर्तना देखने से होता है, लेकिन कोई प्रतिकूल नहीं है तो कोई अनुकूल भी नहीं है, बात खत्म, दोनों द्वंद्व ही खत्म हो गया। इसलिए राग करने का भी कोई कारण नहीं, राग करेगा वो देश किए बिना रहेगा नहीं, दोनों बात इधर नहीं है। ये राग द्वेष से परिमुक्त होकर के वीतराग होने का मार्ग है, सही बात तो वो है। तीसरा, अनादि काल का परिभ्रमण में, अनादि काल के परिभ्रमण में अनंत बार हमारे जीव ने अपना खुद को लेना, दूसरों की बात नहीं है। अनंत काल के परिभ्रमण में अनंत बार हमारे जीव ने शास्त्र श्रवण किया, मैंने शास्त्राभ्यास बहुत किया, अनंत बार विद्या अभ्यास किया, अनेक प्रकार की विद्या भी की सीख ली, अनंत बार जिन दीक्षा लिया, क्या किया, गृहस्थी को छोड़ करके अनंत बार जिन दीक्षा भी लिया, साधु हो गया। अनंत बार लोगों ने आश्चर्य पद दे दिया, क्या किया, साधु होने के बाद क्या किया कि आप तो बहुत बड़े साधु है, हम आपको आचार्य पद की पदवी देंगे, तो आचार्य पद भी प्राप्त किया। और आचार्य पद गुरु का होता है तो लोगों को उपदेश भी बहुत दिया, मात्र सत मिला नहीं है, सत पुरुष नहीं मिला, क्या हुआ, अनंत काल के परिभ्रमण में एक बार भी सत नहीं मिला, सत्पुरुष नहीं मिला। ऐसे मिला है, संयोग हुआ है, लेकिन पहचान नहीं हुआ तो उसकी वैल्यू नहीं आई, इसका मूल्यांकन नहीं हुआ। तो मिला वो नहीं मिला बराबर हुआ क्या नहीं हुआ? हम कहते थे, सोनगढ़ जाते थे ना, ये देखो सोनगढ़ एक छोटा गांव है जिसकी आबादी 4000 लोगों की है, तो क्या गुरुदेव उस 4000 लोगों को मिले के नहीं मिले? के नहीं मिले। और हम भावनगर से जाते हैं तो हमको मिले हैं, ये 4000 लोगों को नहीं मिले। गांव की बस्ती है 4000 लोगों की, वो लोग भी जानते हैं कि गांधी स्वामी का आश्रम है, लेकिन उनको कोई लेना देना नहीं है। जो सब्जी वाले हैं तो ऐसा सोचते हैं कि देखो गांधी स्वामी का आश्रम है, कहीं लोग आते हैं तो हमारी सब्जी बिकेगी। चप्पल वाला समझता है कि मेरा चप्पल बिकेगा, और गाड़ी वाला रिक्शा वाला समझेगा कि मेरे को भी 2 ग्राहक ज्यादा मिलेगा। तो उनको तो स्वामी जी से कोई लेना देना है ही नहीं, तो अपना अपने दृष्टिकोण से देखेंगे। ऐसे सही दृष्टिकोण सत्पुरुष मिलने पर नहीं हुआ तो सत मिला नहीं, तो सत नहीं मिला। मात्र सत मिला नहीं, सत सुना नहीं, सत मिला नहीं और सत सुना नहीं। मैंने आत्म कल्याण का विषय सुना नहीं, कि मेरा आत्म कल्याण कैसे होता है वो सुना नहीं। संसारिक भावना तो चालू छे अनादि थी, वही भावना बदलाय नहीं, आत्मकल्याण ની ભાવના આવે નહીં, તો સંસાર ભાવના તો ના દિશે આવી। વો તો કોઈ નહીં કરને કે હે નહીં, વો તો ચાલુ હી ચાલુ હે સબ કો, તો પલટે નહીં તો વાત ખતમ। તો ઉસકો ઉસને સત સુના હી નહીં, ચેન્જ ઓફ પ્રાયોરિટી નહીં આયા તો સત સુના નહીં। और सत का श्रद्धान नहीं किया, विश्वास नहीं आया, और ये मिलने पर, ये सुनने पर, और ये सदने पर ही छूटने की वार्ता का आत्मा से भणकार होगा। भंकार को भंकार ही कहते हैं, क्या कहते हैं,
गुंज
है, अंदर से गुंज आएगी। इसका मतलब वो है, ये प्रसंग बनता है सत्पुरुष मिलने पर, और मिलने से उनकी जो आत्मकल्याण के संसार से छूटने की जो कला है, वो कला का दर्शन होता है। अरे ये तो यही छुटकारा होता है, मैं कोई क्रियाकांड कर कर के मर जाता ने तभी कुछ होने वाला नहीं था। 6-6 मास का उपवास करके हड्डी निकल जाए बाहर देह की, मांस सब गल जाए, तो भी आत्मकल्याण होने वाला नहीं था। अब यूं हो जाएगा। तो कला जब समझ में आती है छूटने की, तो उनको अंदर से आत्मविश्वास पैदा होता है कि अब मैं मुक्त होने वाला हूं, मेरी मुक्ति अल्पकाल में हो जाएगी, अवश्य मैं मुक्त हो जाऊंगा। ऐसा एक आत्मविश्वास को बोलते हैं आत्मा का छूटने का भणकार। और ये स्थिति मुमुक्षु दशा में एक बार आ जाती है, सत्पुरुष के योग होते ही ये स्थिति कभी आती है। पर ऐसी स्थिति जब आती है ऐसे जीव को मोक्ष विशेष दूर नहीं होता। 569 पत्र में वो वचनामृत लिया है, गंभीर वचनामृत है कृपा का, कि तथारूप योग होने से। तथारूप योग माने क्या? कि खुद को छूटने की पूरी भावना हो जाए, जग जाए, और छूटने का रास्ता दिखाने वाला सत्पुरुष उसी परिस्थिति में मिल जाए। तथारूप योग होने से एक क्षण भी आत्म जागृति आ जाए, अंतर भेद जागृति हो जाए, उसके लिए मोक्ष विशेष दूर नहीं है। ये अंतर भेद जागृति हो गई। तो अंतर भेद जागृति में क्या हुआ कि जो संसार परिणति है उसका भेद मैंने छेद हो गया, परिणति का पलटा खा गया, पलट गई परिणति। तो उसको क्या है कि उतना सत्पुरुष के प्रति उपकार बुद्धि आती है तो उसकी परिणति वो हो जाती है, इसकी परिणति वो हो जाती है।
नजर आई जाए, नजर आई जाए आपके
पास। हाँ, फिर उसको आत्म कल्याण करने की परिणति हो जाती है। बस कैसा तैसे भी ये कर लेना है मेरे को, इस मनुष्य भाव में जैसे तैसे भी कर लेना है। अब ये मौका हमको चुकना नहीं है। अनंत काल से उन्हें ये मौका शायद नहीं मिला है, ऐसा मौका मिल गया है उनको। ये भाषित लगने लगता है कि अनंत काल में ऐसा मौका मुझे मिला नहीं है, अब मिल गया है, अब मैं चुकने वाला नहीं हूँ। कहते हैं ना, अपना दाव आया है, अभी दाव है, ऐसा लगता है छूट जाता है, तो अपूर्व आत्म कल्याण हो जाता है। जो अनंत काल में नहीं हुआ ऐसा हो जाता है, उसका मूल्य किसी भी तरह किया जाता नहीं है। मोक्ष का मार्ग बाहर में नहीं है परंतु आत्मा में है। मोक्ष का मार्ग बाहर नहीं है परंतु आत्मा में है। मार्ग को प्राप्त किया हुआ ही मार्ग को प्राप्त कराएगा। जो अंधा नहीं जानता है वो क्या बताएगा, खुद तो अंधा है। जिसने मार्ग देखा है वो तो मार्ग बताएगा, ऐसा नहीं किया, मार्ग को प्राप्त कराएगा। ऐसा लिया है। देखो, सुभाग भाई का दृष्टांत ले ले तो सुभाग भाई को कैसे संसार समुद्र में से डूबते हुए बचाया। तो जैसा कोई मनुष्य समुद्र में या पानी के पूर में, ये गंगा बहती है ना कलकत्ता में, उसमें कोई डूबता है, पानी बहुत है नीचे, उसको यहाँ से पकड़ करके खींच लेता है, एक झटके से खींच करके किनारे पर रख देता है। हाँ, ऐसे डूबते हुए संसारी जीव को यानी खींच लेते हैं, सुभाष भाई को ऐसा खींचा है। इसलिए कहते हैं कि मार्ग को जिसने प्राप्त किया है वो मार्ग को प्राप्त कराएगा, क्योंकि वो सर्व प्रकार से तैयार है। सौभाग्य भाई में क्या देखा कि ज्ञानी के मार्ग पर चलने का अद्भुत निश्चय, बहुत बड़ा गुण है। तो पहला संकेत उनको प्राप्त हो गया था, इसका मतलब कि पहला संकेत इसको प्राप्त हो गया था। फिर वो कृपालु देव की भक्ति में उतने आ गए, उतने आ गए, उतने आ गए, बाहर ही नहीं निकलते थे। कृपालु देव को बाहर निकालना पड़ा उसको। ऐसे भक्ति में वो डूब गए थे, मुझको निकालना पड़ा। अरे तुमको आत्म कल्याण करना है, मेरी भक्ति क्या करते हो, मुझे तो थोड़ी अपेक्षा है, मेरे तो कोई अपेक्षा नहीं है, तुम आगे बढ़ो, आगे की दशा तुमको क्यों नहीं है। तो कि हमको दूसरा सूझता नहीं, आपकी भक्ति को छोड़ करके दूसरा सूझता नहीं है। तो ठीक है, हम तुमको निकालेंगे, हम जानते हैं कैसे निकालना, वो भी हम
जानते हैं।
ऐसा ट्रीटमेंट दिया और ले गए मोक्ष मार्ग तक। दो अक्षर में मार्ग कहाँ है, कितना अक्षर है, दो अक्षर मार्ग में, अक्षर तो दो है, मार्ग शब्द है, अक्षर उसमें दो है। दो अक्षर में मार्ग ऐसा शब्द कहा है, और अनादि काल से इतना साधन किया, धर्म साधन बहुत किया बहुत किया, फिर भी क्यों ये मार्ग प्राप्त नहीं हुआ दो अक्षर वाला। दो अक्षर वाला मार्ग वास्तव में ढाई अक्षर है, वास्तव में तो आधा है ना, ढाई अक्षर है, ढाई अक्षर वाला मार्ग है, लंबा चौड़ा नहीं है, फिर भी क्यों प्राप्त नहीं हुआ उसका विचार कीजिए, तो क्यों नहीं हुआ। कि हमने राग किया है और कुछ किया नहीं है, और मार्ग वितराग है, मार्ग तो वितराग है, तो कभी राग किया कभी द्वेष किया, कभी राग किया कभी द्वेष किया, यही किया है।